श्री राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय गोपी जन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 संकीर्तन की जय हो। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 काले के साथ बड़े प्रेम से जय जय जगन्नाथ जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जय मुदीरये श्रीमद्भागवतम् दशमस्कंद अध्याय 11 और श्लोक संख्या 35। वृंदावनं संप्रविश्च सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटेरर्धसंद्रवत् वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटेरर्धचंद्रवत् वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटेरर्धचंद्रवत्
Thank you.
सुखार्थं प्रविश्य सर्वकाल सुखाव ठीक है। वृंदावनम, वृंदावन नामक पवित्र स्थान में संप्रविश्य प्रविष्ट होकर सर्वकाल सुखावहम, जहां सभी ऋतुओं में रहना, जहां सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है, तत्र वहां चक्रुः बनाया, ब्रज आवासम ब्रज का निवास, शकटहे बैलगाड़ियों से, अर्धचंद्रवत आधे चंद्रमा जैसा अर्धवृत्त बनाकर, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस तरह से वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहां सभी ऋतुओं से रहना सुहावना लगता है, उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्रकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थाई निवास बना लिया। विष्णु पुराण में कहा गया है, शकटी वाट पर्यंत चंद्र अर्धाकार संस्थिते, और हरिवंश में कहा गया है, कंट की भी प्रवृद्धा भिस तथा कंटी की विद्रुम ने निखातो श्रिद्ध शाखा विरभिगुप्तम समन्ततः, चारों ओर से बड़ा बनाने की आवश्यकता न थी, एक ओर पहले से ही कंटीले वृक्ष थे, इस तरह कंटीले वृक्ष बैलगाड़िया तथा पशुओं से उनके अस्थाई निवास घिर गए। श्री प्रभुपाद की, आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मिलिन्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर महत पादयिमा पुरो विभो निर्माय क्षेतेर यद मोक्ष पुरुषा भुंगतेर गुणान षोडश षोडशात्मकम् स्वलंकृ सृष्टम् भगवान् वचांसि मे जयतां सुरतों पंगुं मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो श्रीराधा मदन मोहनो श्रीराधा मदन मोहनो। हरे कृष्णा। प्रातः श्रीमद्भागवत सत्र में आप सभी भागवत अनुरागी भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वागत है। बंधुओं, भक्तों का यही स्वभाव है कि वो भगवान की कथा को आपस में कहते सुनते हैं, बोधयन्ति परस्परम। गीता में भगवान कहते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं, कथयन्तिश्च माम नित्यम बोधयन्ति परस्परम। भगवान की कथाओं को, मेरी लीला कथाओं को जो है आपस में कहते सुनते हैं, कहते हैं सुनते हैं, बोधयन्ति परस्परम, एक दूसरों का अनुभव बताते हैं और इस प्रकार से बोध प्राप्त करते हैं। और जब भक्तों का आपस में बोध होता है, भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रति भाव का जब अनुभव होता है, तो इससे जो है भगवान के प्रति हमारी जो रुचि है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बढ़ता है। तो ये बड़ा अवसर हमको मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है कथा कहने सुनने का, उसमें डूबने का, आनंद लेने का। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। जिन लीलाओं को सुन करके सहज ही हृदय में आनंद होता है, क्योंकि भगवान की माधुर्य मंडित बाल लीलाएं यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो ब्रज में निरंतर चलती रहती है। इन लीलाओं को सुनते सुनते आज तक बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, ब्रह्मा शिव इत्यादि जिसका गायन करते हुए नहीं थकते हैं और सुनते हुए नहीं थकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों का यही जीवन होता है। यद वैष्णवानाम धनम, और वैष्णव का यही धन होना चाहिए, यही धन वास्तव में वैष्णव का सही है। दूसरा जो जो भी धन है वो धन यहाँ के लिए है, यहाँ की वस्तु सब यही रह जाएगी। केवल यही धन वैष्णव जो है अपने साथ लेकर हरि कथा और हरि कीर्तन, हरे कृष्णा चलते हैं साथ में लेकर, इस धन को साथ में लेकर चलते हैं। तो ये वैष्णव का धन है भागवत, इसीलिए हमें प्रतिदिन इस भागवत को आपस में कहना सुनना। स्थिति को बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़े, जो भी छोड़ना पड़े, तो करते रहना चाहिए। तो आइए हम भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं। जहां पर ये प्रसंग है कि भगवान बाल लीला करते हुए ब्रज में जब से जन्म लिए हैं, गोकुल में हैं, और बाल लीलाएं करते करते जब दामोदर लीला और ये जो है नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार करने तक की जो लीला है वो भगवान गोकुल में किए हैं। वैसे भगवान रसिक से करे, रसो वैस, भगवान सभी रसों को आस्वादन करने वाले हैं, और दूसरे शब्द भगवान भोक्ता है और हम लोग भोक्ता नहीं है। भगवान भोक्ता है, जीव उसकी सेवा के लिए बना है, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो भगवान के रसों को, उनके आनंद को पुष्ट करने के लिए प्रयास करें, है ना। परंतु होता ऐसा है कि हम जो है जीवात्मा भगवान को तुष्ट करने की बजाय हम खुद भोगना चाहते हैं संसार के भोगों को, संसार के विषयों को, और खुद सुखी होना चाहते हैं, परंतु ये हमारा स्वभाव नहीं है, और इसीलिए इसमें हम सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए हम नहीं बने हैं। हम बने हैं भगवान के रसों को पूरा करने के लिए। इसलिए यदि हम प्रसन्न भी होना चाहते हैं, खुश भी होना रह, आनंद भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं आनंद की खोज में, वो रास्ता नहीं है, है ना। धन में, परिवार में, समाज में, संसार में जो खोज रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता तो यही है कि हम यदि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करें, उनके आनंद को यदि पुष्ट करेंगे, तो हम भी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे जैसे किसी वृक्ष के जल में पानी डालने से उनके पत्ती पत्ती जो है पुष्ट हो जाती है। वैसे यदि हम भगवान के आनंद की पुष्टि करेंगे तो हम खुद भी आनंदमय हो जाएंगे। इसलिए भगवान की सेवाओं से जुड़े रहना, उसी को ही आनंद प्राप्त होता है। जो भगवान के सेवाओं से या भगवान के संबंध से जो अलग हो चुके हैं, अपना मुख मोड़ लिए हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान से हमारा नाता जो टूट चुका है उसको जोड़ने का प्रयास करते रहना, और उसको जुड़े रहते हैं तो वो पेड़ के मूल में जो पानी डाला जाता है वो पानी पत्ते पत्ते डाले तक पहुंच जाता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचता जिनका नाता उस वृक्ष से कट गया है। जो पेड़ में कुछ डाली लगी रही थी लेकिन वो कट गई, इसलिए उनका संबंध कनेक्शन टूट गया है, और वहां ये पानी नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमें अपने आप को भगवान से जुड़े रहना चाहिए, और इसी में जो है भगवान का आनंद हमको प्राप्त होगा। तो भगवान को पुष्ट, आनंद को पुष्ट करना यही जीव का स्वभाव है, और उसी आनंद से ही हम भी आनंदित होंगे, हम भी सुखी हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था यहां पर कि वृंदावन में भगवान जो है रसो वैस, रसों के आगार है, और वो रस चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के रस हैं। वास्तव में रस के विषय में भी प्रश्न होता है, रस माने क्या, और ये भगवान जो रस है वो वैस है ना। हम कभी कहते हैं भक्ति रस, हरिनाम रस, कथा रस, ये सब रस है। रस माने चमत्कारिक सुख है ना। इसमें रस क्या मिलता है, बोले चमत्कारिक सुख प्राप्त होता है, और ऐसा सुख कि जैसा सुख इस संसार में कहीं नहीं मिलता है। जो कथा में, कीर्तन में आनंद, जो सुख मिलता है, तो भगवान रसो वैसा है, और हम उनके रस को पुष्ट करने के लिए बने हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि भगवान के अलग अलग रसों को पुष्ट करने का प्रयास करें, और विशेष रूप से भक्ति रस के द्वारा, और भक्ति में अलग अलग रस बनाए गए हैं। तो श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की, श्री गौर निताय की। तो भक्ति में अलग अलग रस है, इसलिए भगवान ने अपने वयस को, वैसे भगवान का कोई जन्म भी नहीं होता है, उनकी कोई उम्र भी नहीं होती है, परंतु अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान ने अपने आप को अलग अलग वयस्क में प्रविष्ट किया है। कैसे? जैसे भगवान ने बाल लीला की, तो बाल लीला जो है वो जो है बालक वयस्क, एकदम छोटा 5 साल तक का जो बालक है वही बाल लीला कर सकता है और वात्सल्य रस को आस्वादन कर सकता है। बड़ा जब हो जाता है कोई 15 साल का 20 साल का, तो फिर अपनी माता की गोदी में नहीं बैठ सकता है ना, वो वात्सल्य रस को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो भगवान ने अपने वयस्क बाल्य पौगंड और कुमार के रूप में करके अलग अलग रसों का आस्वादन किया। जब बाल रूप लिया तो आज तक जो यहाँ पर चल रही थी लीला, जिसमें माता के गोद में खेलना, माता के स्तनपान करना इत्यादि अनेक अनेक लीलाओं भगवान ने की, और जिससे उन्होंने माता का भरपूर वात्सल्य प्रेम को आस्वादन किया नंद बाबा से और गोपियों से सभी से। और इसमें इन ब्रजवासी भक्तों ने अपना अपना योगदान, अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद भगवान पौगंड अवस्था में आते हैं, तो तब भी भगवान कुछ न कुछ लीला से या अपने मित्रों से, पौगंड अवस्था में भगवान ने वात्स साक्ष्य रस का आस्वादन किया है ना, सखा के रूप में। और वास्तव में 5 साल के बाद जो मित्र के साथ आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो कुछ अलग है, अद्भुत है। तो भगवान ने इस पौगंड अवस्था में अपने मित्रों के साथ खेलना, माखन की चोरी करना, उसको खाना, बछड़े को चराने, सब आनंद लिया। और फिर किशोर अवस्था में भगवान जब 10-11 साल के हो गए, तब उन्होंने माधुर्य रस का आस्वादन किया गोपियों के साथ। तो इस प्रकार से किशोर अवस्था 11 से 16 साल तक, 15 साल तक भगवान ने इस किशोर अवस्था में माधुर्य रस का आस्वादन किया। तो भगवान रस को आस्वादन करने के लिए अपने आप को अलग अलग वयस्क में डालते हैं। तो वैसे ही भगवान की लीलाओं के अलग अलग स्थान हैं। जैसे आज तक की जो लीला हुई भगवान के दामोदर लीला, और इसके बाद ये जो है नलकूप मणिग्रह का उद्धार, ये लीला जो है भगवान की गोकुल में हुई है ना। क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में पहला शब्द बताया जा रहा है वृंदावनम प्रविश्य, भगवान वृंदावन में प्रवेश हो करके प्रवेश किया। और प्रवेश तो प्रश्न होता है कि भगवान क्या वृंदावन में नहीं थे, है ना। वृंदावन के बारे में तो बताया गया है कि यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान अपने वृंदावन धाम में नित्य विराजमान रहते हैं, वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। और हम आगे सुनते हैं कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में हुआ, अथवा तो हम कहते भगवान की सारी लीला वृंदावन में हुई, तो फिर वृंदावन प्रवेश करने की बात कैसे हुई। अब तो वो जन्म भले ही मथुरा में लिए, लेकिन जन्म लेते ही वो बाद में आ गए। तो भक्तों इसका अर्थ ये है कि हम जो वृंदावन बोलते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन है, तो उस वृंदावन है तुलसी जी का वन, वो वृंदावन ब्रज में चारों ओर तुलसी जी हैं। परंतु उस वृंदावन जो पूरा है उसके अंदर 12 मुख्य वन है, और उसमें से एक वन का नाम है वृंदावन। तो भगवान वृंदावन में थे, और उसमें महावन जहां पर गोकुल है और उसी में ही भगवान की बाल लीला आज तक सब होती रही। परंतु अब उन महावन से गोकुल से भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा क्यों आए तो आपने आगे के श्लोकों में इसका वर्णन सुना होगा कि भगवान वृंदावन में क्यों आ रहे हैं। बोले ब्रजवासी जो थे सभी आज तक उन लोगों ने देखा कि कृष्ण पर बहुत सारे विकट जो है आपत्ति आ रही है, बार बार बड़े बड़े असुर आ रहे हैं, है ना। अभी जन्म ही लिया था तो तुरंत ही पूतना आ गई और अलग अलग असुर सत्तासुर आ गया, तो इस प्रकार से अनेक अनेक असुरों का उत्पात जब ब्रजवासियों ने देखा। तो एक दिन नंद बाबा के भवन में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये विषय निकला। कौन सा विषय था जिसमें ये विषय सोचा जा रहा था कि हमारे लाला जो कृष्ण है और जो ब्रज का प्राण है, वास्तव में श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो ब्रज का प्राण है, ब्रज के भक्तों का प्राण है, उसके बिना भक्त जीवित नहीं रह सकते ब्रजवासी। तो ऐसे ब्रजवासी के प्राण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो छोटा सा बालक है कन्हैया, मीटिंग हुआ और मीटिंग में विषय चल रहा था कि ब्रज में इतने सारे उत्पात हो रहे हैं, हमारे कन्हैया पर इतनी सारी आपत्ति आ रही है, बड़े बड़े असुर आ रहे हैं, इसलिए हमें हमारे बच्चों के कल्याण के लिए इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में ये जो कष्ट सारा जो ब्रज में आ रहा था किसके लिए आ रहा था, कृष्ण के कारण आ रहा था, है ना। यद्यपि ये सारा जो उत्पात है वो कृष्ण के कारण हो रहा था, तो कल्याण तो यही था कि कृष्ण को निकाल दिया जाए, है ना, तभी तो कोई आपत्ति नहीं आ सकती है कि नहीं। परंतु भगवान के प्रेमी भक्तों का यही विचार होता है कि कृष्ण के कारण यदि जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो वो कृष्ण को नहीं निकालते हैं, उन कष्टों से दूर निकालने का प्रयास करते हैं जो कृष्ण के ऊपर आ रहे हैं। भक्तों बहुत रहस्य की बात है कि जब ब्रजवासियों के जीवन में कष्ट आ रहा था कृष्ण के कारण, तो उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि ये कृष्ण के कारण आ रहा है तो हम कृष्ण को ब्रज से बाहर कर दें। उन लोगों ने ये सोचा कि हम कृष्ण के पर आते हुए संकटों का निवारण करेंगे, है ना। अब हम लोग भगवान के सामने जाते ही मांगते रहते हैं कि प्रभु हमारे दुखों को दूर कर दीजिए, है ना। नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं हमारी भक्ति में आने वाले विघ्नों को दूर कर दीजिए, कष्टों को दूर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर व्रजवासी उन भगवान पर आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? अब क्या भगवान के ऊपर आए संकटों को ब्रजवासी दूर कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है कि ये हमारा कन्हैया है। वो नहीं, ये नहीं जानते हैं कि ये हमारा ठाकुर है, ये हमारा भगवान है, नहीं जानते हैं। वो यही जानते हैं कि ये हमारा छोटा सा बालक कन्हैया है और भगवान इसी रस को, इसी भाव को आस्वादन करना चाहते हैं कि कोई उसे पुत्र कहे और उससे वात्सल्य कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, मैं उनका लालन करूंगा, उनका पालन करूंगा, और इस रस में भगवान को आनंद आता है। तो ब्रजवासी उनको ये रस दे रहे हैं और इसी भाव में सब लोग, नंद बाबा और उसके बड़े भाई थे उपनंद जो सबसे बड़े थे, ये सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि हम इसको जो है ब्रजवासियों का, ब्रज का रक्षण करेंगे, मतलब हमारे कन्हैया का ऊपर आई हुई आपत्ति का निवारण करेंगे। तो इसीलिए, और वास्तव में हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि जहां बच्चों के लिए खतरा हो या हमारी कल्याणकारक स्थान न हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब आज के समय बच्चों के ऊपर क्या आपत्ति है, बहुत सारी है ना, बच्चों को बिगड़ने के लिए, बच्चों को बच्चों को बिगड़ने के लिए जो जो स्थान है, माता पिता को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के हित के लिए स्थान भी चुने और ऐसा स्थान चुने कि जहां पर बच्चों का सारा कल्याण हो, उनका जीवन जो है संसार के दुनियावी जो कलयुग का जो प्रभाव है उससे बचे और उससे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हो जिससे उनके जीवन सुखमय होगा। तो हर माता पिता को इस प्रकार की चिंता अवश्य करनी चाहिए। और उपनंद महाराज ने कहा कि हमारे लिए स्थान उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है असुरों का उपद्रव हो रहा है, इसलिए हमारे नजर में एक स्थान है। बोले कौन सा स्थान है आपकी? तब उपनंद कह रहे हैं कि हमारे नजर में वृंदावन नामक जो स्थान है वो बड़ा अच्छा है क्योंकि जहां पर यमुना भी है और बहुत सुंदर सुंदर घास और यमुना का तट है जहां पर गायें चर सकती है, तो हमारे गायों के लिए भी अच्छा है और रहने के लिए भी बड़ा सुंदर स्थान है। क्योंकि गोकुल जो थे, गोकुल तो गोकुल में बहुत लोग बसते थे, मतलब बहुत लोग रहते थे और भीड़ था पूरा, और भगवान को ये भीड़ वाली जगह में अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि भगवान है एक तो टेढ़े हैं तीन जगह से, इसलिए किसी छोटी जगह में वो रह नहीं सकते है ना। और दूसरा भगवान का अपना स्वभाव है कि वो स्वतंत्र और आनंदमय जीवन को जीना चाहते हैं, सुख से बिल्कुल विहार करते हुए, क्योंकि उनका जीवन ही है, वो चलते भी है तो नाचते हुए चलते हैं। अब छोटी छोटी गलियों में कहां वो नाचेंगे, गोकुल की गलियों में। और तो उन्होंने सोचा, भगवान की भी इच्छा थी कि हम वृंदावन चले जाए क्योंकि वहां यमुना का पुलिन बहुत सुंदर तट है, वहां पर हम गोप बालकों के साथ आनंद ले सकते हैं, घूम सकते हैं, विहार कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने ही गोप बालकों के हृदय, नंद बाबा और उपनंद के हृदय में प्रेरणा दी कि हमको वृंदावन ले चले। तो उपनंद वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में यमुना भी है और वहां से नजदीक गोवर्धन भी है, तो हमारी गैया वहां भी चर सकते हैं, यमुना में पानी भी पी सकते हैं और हम भी वहां पर सुख से रह सकते हैं। तो इन सब चीजों का विचार करके उपनंद जी ने यह निर्णय दिया कि हमको वृंदावन जाना चाहिए। और तब जो है सारे, तो एक और भी यहाँ पर शिक्षा मिल रही है कि जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना है तो हर व्यक्ति को चाहिए कि जहां जाना है उसके लिए अच्छा स्थान ढूंढे, है ना। तो उपनंद जी ने यहां जो स्थान था गोकुल, उससे भी अच्छा स्थान वृंदावन तय किया। तो वैसे ही हम जीवात्मा का भी कर्तव्य है कि हम इस स्थान को तो एक न एक दिन छोड़ने वाले हैं, तो इस स्थान को छोड़ने के बाद ऐसा स्थान के लिए विचार करें जो सभी ओर से सुखमय हो। और वो कौन सा स्थान है? बोले इस जगत में यहां से वहां, यहीं से वहां, कहीं भी जाए सुख नहीं है। यहां तक कह दिया गीता में कि ब्रह्मलोक पर्यंत जीव कहीं भी जाए वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता, उनको जन्म लेना पड़ेगा और एक न एक दिन मरना पड़ेगा। ब्रह्मा तक को भले उनकी आयु लंबी है, तो ब्रह्मलोक पर्यंत ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पूर्ण रूप से सुख प्राप्त किया जाए। क्योंकि स्वर्ग में भी यदि कोई जाता है तो समय के बाद वापस यहां लौटना पड़ता है। तो ऐसे स्थान जब हम यहां से जाना ही है तो ऐसे स्थान के बारे में विचार करना चाहिए जिसके बारे में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम भव। और जो धाम जो है सुख और आनंद का आधार है, इसीलिए हर प्राणी को, हर व्यक्ति को अपने स्थान को छोड़ने से पहले कोई ऐसा स्थान तय कर लेना चाहिए कि हम वहां जाकर रहेंगे। तो स्थान कौन है? बोले वो स्थान है भगवान का धाम, और वो स्थान पर विचार करके फिर उसको पाने के लिए क्या उपाय है। तो भगवान के धाम में जाने के लिए तो सरल उपाय है कि नहीं? सरल उपाय है कि नहीं? सरल उपाय है, बस भगवान की कथा कीर्तन को करना, सुनना, भगवान की कीर्तन महामंत्र को जपना, हरे कृष्णा कृष्णा इससे भगवान का धाम मिल सकता है, है ना। प्रभुपाद जी जैसे संत गारंटी देते हैं कि यदि कोई चार नियमों का पालन करता है और 16 माला का जप करता है तो गारंटी मैं देता हूं कि मैं उसको भगवत धाम लेकर जाऊंगा। तो इतना सरल साधन है, लेकिन दुर्भाग्य है जीवों का अभी ये भी ठीक से नहीं हो पाता है, है ना। तो इसके लिए हमें अपना प्रयास करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए और इस प्रकार के सत्संग में आते हुए सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार यदि सुनते रहेंगे तो हमारे, वैसे तो भक्तों ने हमारे हृदय को भी वृंदावन कहा है ना। हमारे हृदय जो है, इसलिए जब रथ यात्रा निकलती है तो हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस हृदय रूपी वृंदावन में आप प्रविष्ट हो जाइए, क्योंकि ब्रजवासियों का भाव ये बना रहा है कि हम कृष्ण की रक्षा करें, परंतु भगवान का क्या स्वभाव है? बोले मैं वहां भी जाता हूं, उस स्थान को पवित्र बना देता हूं, वहां पर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोनों ओर से, भक्तों की ओर से भाव होता है कि मैं कृष्ण की रक्षा करूं, कृष्ण को सुख दूं, और भगवान का यह स्वभाव है कि मैं भक्तों को आनंद प्रदान करूं। इसे ब्रज की सारी लीलाएं भगवान ने की भक्तों के आनंद देने के लिए, है ना। नहीं तो भगवान के आते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, परंतु फिर भी ब्रजवासी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनकी भावनाएं हैं कि हम भगवान को सुखी करें, हम कृष्ण को सुखी करें, है ना। नहीं तो भागवत के इस कृष्ण जो दशम स्कंद के प्रारंभ में जब भगवान जन्म लिए और पूतना जब आने वाली थी तो सुखदेव गोस्वामी जहां वर्णन करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली रुधिराशना, बच्चों का खून पीने वाली ये पूतना जो है ब्रज की ओर जा रही है और छोटे से बालक जो है कृष्ण को मारने के लिए जा रहे हैं, तो परीक्षित महाराज तो डर गए। वात्सल्य भाव था कि अरे कृष्ण को मार देगी छोटे से बालक को। तब सुखदेव गोस्वामी ने सावधान किया कि परीक्षित चिंता मत करो, क्योंकि ये कृष्ण को मारने के लिए जा रही है तो वास्तव में ये तो भगवान है, और जिनका नाम लेने मात्र से संसार के भय दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, अरे वो भगवान साक्षात जहां विराजमान है, तो ये पूतना मारने के लिए जा रही है लेकिन वो मरकर वापस लौटेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि ये तो भगवान है, इससे कुछ नहीं होता है, परंतु उनको जो मारने के लिए जाता है भावना से तो वो खुद मर जाता है। तो वैसे भगवान जहां जाते हैं वहां सारे दुग्न विघ्न मिट जाते हैं, भगवान का नाम जिस हृदय में जाता है उनके हृदय के सारे जो कलबश है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको आमंत्रित करना चाहिए भगवान को हमारे हृदय वृंदावन में आने के लिए, है ना। भगवान को वृंदावन प्रिय है। वृंदावन किस लिए प्रिय है? तो इस श्लोक में कहा गया है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन ऐसा स्थान है जहां पर सभी ऋतुएं सुहावनी सुखमय है। अरे तो भगवान का धाम है, कैसे नहीं होगा? जो भगवान के धाम से तुच्छ स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक जो बताया जा रहा है उसमें भी कितनी सुख सुविधा है। यहाँ की गर्मी की मौसम में ठंड लगता है, मतलब जैसे अनुकूल अनुकूल वातावरण, गर्मी में इतनी गर्मी नहीं लगती है और ठंडी में इतनी ठंडी नहीं लगती है, तो ऐसी व्यवस्था स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में है, तो भगवान के धाम के लिए क्या कहना। तब कहते हैं कि सर्व काल सुखावर, सभी जो ऋतुएं हैं वो सुख देती हैं, हर ऋतुएं सुख प्रदान करती हैं और सुहावना लगता है, तो ऐसा वृंदावन है, तो भगवान उसको पसंद करते हैं, इसीलिए वो ब्रज की ओर जा रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो हम भी यदि भगवान को हमारे हृदय में प्रवेश कराना चाहते हैं तो भक्तों हमारे हृदय को वृंदावन बनाना चाहिए। और वृंदावन कैसे बनेगा हमारा हृदय, हमारे भीतर जो असुर बैठे हुए हैं, वैसे तो भगवान आएंगे तो मार देंगे सब, है ना, परंतु भगवान को लाने के लिए कुछ तो ऐसा लगना चाहिए भगवान को कि यहाँ सुख मिल रहा है ना, तभी तो भगवान आएंगे। जब ठाकुर जी आएंगे तो सारे जो कलमश हैं, जो असुर हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य रूपी हमारे हृदय में जो असुर हैं, भगवान उसको मारेंगे सही, लेकिन अब भगवान को कुछ तो ऐसा मन करना चाहिए कि मैं इनके हृदय में जाओ, है कि नहीं, तो कैसे आएंगे। तब कहा जाता है कि भगवान जो है भक्त के हृदय में आने के लिए तब लालसा उनको लोभ हो जाता है जब भक्त भगवान की कथा को सुनता है। जब भगवान की कथा सुनने के लिए हम लोभ करते हैं तो भगवान उस भक्त के हृदय में जाने का लोभ करते हैं। और प्रमाण भागवत का प्रथम स्कंद के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में वेद व्यास जी कहते हैं, सद्य जब से कोई भागवत सुनने की इच्छा करता है, भागवत के बारे में जब बताया गया, उसी समय भगवान सद्य अवरुद्य तेत्र कृति भी, उसी समय भगवान उनके हृदय में जाने के लिए लोभ करते हैं, यहां तक कि वो बंदी बन जाते हैं, है ना। रुक्मणी भी कह रही हैं भागवत के दसम स्कंद में ही आगे चलकर 52वें अध्याय में रुक्मणी मंगलम कथा आती है कि जहां पर भगवान रुक्मणी का पाणी ग्रहण करते हैं। तो भगवान के बारे में रुक्मणी ने बहुत सुना था इसलिए उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने भगवान रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी और उनके सब परिवार वालों ने उनका विवाह जो है शिशुपाल के साथ तय कर दिया था बिल्कुल। तब रुक्मणी भगवान से प्रेम करती थी और कभी ठाकुर जी को देखा नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जैसे हम लोगों ने भी कभी भगवान को नहीं देखा है, है ना, परंतु उन्होंने भगवान के बारे में सुना था और सुनते सुनते वो भगवान को पूरा पूरा समझ चुकी, तो वैसे ही हमें सुनना चाहिए। तो रुक्मणी भगवान को जब पत्र लिख रही है, प्रेम पत्र जिसे कहते हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने 7 श्लोकों में एज इट इज उनको भागवत में रख दिया, और उनका जो पहला श्लोक है वो पहले श्लोक में ही रुक्मणी कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मैं पत्र लिख रही हूं, आप कैसे हैं, तो लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तोंग तापम। भगवान आप कैसे हैं, बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आप तो भुवन सुंदर है, और श्रुत्वा जो आपके बारे में सुनता है निर्विश्य, जब आपके बारे में सुनता है निर्विश्य कर्ण, तो कर्ण के द्वारा भगवान जो है उनके हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर के क्या करते हैं, बोले अंग तापम, उनके हृदय में जो ताप जल रहा है ना, जीवत सभी प्राणियों के हृदय में, इस जीवात्मा के हृदय में जो काम क्रोध रूपी जो ताप या संसार की पीड़ा आदि देविक आदि भौतिक जो ताप जल रहा है, अंग तापम शांत, आप उसको शांत कर देते हैं। कब, श्रुत्वा गुणान, जब आपके गुणों और रूप और लीला को कोई कथा को कोई सुनता है तो कर्ण के द्वारा भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। है ना। तो मैं कह रहा था कि भगवान को हृदय में प्रवेश कराना है तो पहले भगवान को भी लोभ होना चाहिए। तो भगवान को लोभ तब होगा जब हम उनके गुण रूप लीलाओं की कथा को सुनेंगे, और तब भगवान कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं। तो रामायण में भी ये प्रसंग आया है, भगवान जब गए तो वाल्मीकि ऋषि के पास और पूछा गया कि प्रभु मैं इस वन में कहाँ रहूं। भगवान तो लीला कर रहे थे, उन्होंने पूछ दिया कि अब मैं इस वन में कहाँ रहूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कहाँ नहीं हैं। बोले नहीं, फिर भी मुझे कुछ स्थान बताओ। तो भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान वहां विराजते हैं जिनके कर्ण समुद्र समान, जिना जिनके कान जो है समुद्र के समान है। समुद्र के समान कैसे हैं? बोले समुद्र में अनेक अनेक सरिताएं, अनेक अनेक नदी बिल्कुल बहती रहते हैं, आती रहती है, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। तो जिनके कर्ण समुद्र के समान है, सुभगत कथा सुभगत सरिनाना, भगवान की कथा जो है वो सरिता के समान है, और जैसे ही वो कान में प्रवेश करती जाए, लेकिन जिनके कान भगवान की कथा सुनते सुनते कभी तृप्त न हो, प्रभु आप इसके हृदय में विराजमान। और भगवान उसी के हृदय में विराजमान होते हैं जो निरंतर कथा सुनते सुनते जिनके कान कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो हमें भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए लोभ करना चाहिए, और भगवान को लोभ तब होगा जब हम उनकी कथा सुनेंगे। तो हमारे इस हृदय रूपी वृंदावन बनाने के लिए इसमें कथा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि भगवान के वृंदावन में यही तो होता है ना। वहां क्या होता है? नित्य कीर्तन और गान होता है। भगवान के धाम में यही होता है कि भगवान के भक्त उनको नित्य उनका गान करते रहते, उनकी कीर्ति का गान सुंदर सुंदर रागों में गाया करते हैं, और इस प्रकार से उनकी सेवा होती रहती है। तो इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, और इसी से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं सर्व काल सुखावह, मतलब जिस वृंदावन में सर्व ऋतु जो है सुख प्रदान करती है। तो भगवान गोकुल से निकले, और आप सबने आगे के श्लोकों में सुना होगा कि किस किस प्रकार से भगवान की यात्रा हुई वृंदावन की, है ना, जिसमें माता यशोदा रोहिणी अलग अलग चकड़े पर बैठी हुई हैं, और उनके गोदी में कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, और बीच बीच में कृष्ण इस वन को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और बीच बीच में वो पूछ दिया करते यशोदा से कि मैया ये कौन सा वृक्ष है, का क्या नाम है। तो माता तरह तरह से अलग अलग वृक्षों का नाम बताती हैं, इस प्रकार से वृंदावन का दर्शन कराते हुए और उनकी यात्रा जो है वृंदावन तक पहुंचती है। वास्तव में जीव भी, हमारा जीवन भी भक्तों एक यात्रा है ना। हम भगवान से अलग हुए तब से यात्रा में हैं, और हमारी यात्रा तब समाप्त होगी जब यात्रा को वृंदावन तक ले जाएंगे, क्योंकि हम सबका गंतव्य स्थान भगवत धाम है। भगवान का धाम ही हमारा गंतव्य स्थान है, इसलिए इस जीवन रूपी यात्रा को हमें वृंदावन तक जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तब हमारी यात्रा। वैसे भगवान भी यात्रा करते हैं, जीव भी यात्रा करते हैं, और वृंदावन की मतलब भगवत धाम की यात्रा के बिना हम जितनी भी संसार की यात्रा करते हैं, मतलब संसार की यात्रा माने संसार के विषय में सोचते हैं, संसार के लिए कार्य करते हैं, ये सारी जो यात्रा है वो केवल दुख ही दुख देगी। परंतु भगवान के धाम जाने की जो यात्रा है वो यात्रा में सुख ही सुख है ना। यहाँ जब जो बैठे हुए हैं वो सब भगवत धाम के यात्री हैं, और क्या दुख है जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। तो जीव भगवान से विलग होकर संसार की यात्रा के जब निकला है तो इसमें दुख ही दुख है, लेकिन उसी यात्रा को यदि वो भगवान के लिए कर देता है तो उनका जीवन सुख ही सुख होता है। और इस यात्रा में आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, भगवान ही अपने आप रास्ता करते हैं, है ना। इस यात्रा के लिए जब कोई निकलता है भगवान को यात्रा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, तो सारे जो उनके लिए विघ्न है वो दूर हो जाते हैं और सुखी सुख प्राप्त हो। तो भगवान गोकुल से वृंदावन की यात्रा के लिए निकले और भी इसमें तरह तरह की लीला करते हुए, यशोदा से पूछते हुए, और आखिर में वृंदावनम प्रविश्य, भगवान ने वृंदावन में प्रवेश कर दिया। और वहां का वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी, तत्र चक्र व्रजावासम, उस व्रज आवास में भगवान का पहला आवास कैसा था ब्रजवासियों का, सकटेर अर्ध चंद्रवत। देखिए बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी इस ब्रज का दर्शन करते हुए देखते हुए बोल रहे हैं कि पहले जब वो पहुंचे वृंदावन में तो आचार्यगण लिखते हैं कि आज भी वृंदावन यमुना के तट पर जो है बहुत सारे घाट हैं, उसमें से वत्सन क्रीड़ा नाम का जो घाट है वहीं से भगवान ने प्रवेश किया, वहीं से सटी करा, ये पूरे स्थान का नाम था। तो वहीं आकर उन्होंने सभी ब्रजवासियों ने निवास स्थान किया, और कैसा निवास स्थान था, बोले अर्ध चंद्रव्रत, जैसे आधा चंद्र हो वैसे अपना आवास बनाया, ब्रज आवास। और प्रथम तो कह रहे हैं कि अस्थाई निवास, मतलब अब पहले दिन ही प्रवेश किए हैं तो अस्थाई, बिल्कुल स्थाई नहीं था। अस्थाई मतलब वो कह रहे हैं कि शकटेर, उनके साथ जो सकड़े थे, बैलगाड़ी थे, उसको चारों ओर रखते हुए और साथ ही साथ चारों ओर अनेक प्रकार के वृक्ष थे, तो उस वृक्ष के चंद्रवत आकार उसमें भी बैलगाड़ियों को रख के और अर्ध चंद्रवत वो स्थान बनाया, और फिर भगवान वहां रहने लगे। और फिर आगे चल करके वहां बहुत सुंदर नंद भवन बनेगा, सभी गोप ग्वालों का भवन बनेगा, और बीच में नंद भवन बनेगा, और फिर भगवान वहां पर सुख से रहेंगे। आगे वर्णन है उसका कि भगवान को उस स्थान में पहुंचकर बड़ा सुख मिला कृष्ण और बलराम को, क्योंकि भगवान को ऐसा वन पसंद है। वैसे गोकुल जो है वो पूरा गांव है और उसमें बहुत बस्ती थी, इसलिए वन में इन लोगों ने प्रवेश किया, वैसे वृंदावन। तो वन तो भगवान को पहले से प्रिय है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भगवान जो है छोटी सी जगह में, कंजेस्टेड जगह में नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हम भी यदि हृदय में भगवान को बिठाना चाहते हैं तो हमारे हृदय को उदार बनाना चाहिए, है ना, बड़ा हृदय बनाना चाहिए, तभी जाकर भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनको खेलने के लिए स्थान हो, उनको सुख मिले। तो वृंदावन में आकर भगवान को बड़ी संतुष्टि हुई और भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए हम भी यदि वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में जाकर के साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान को स्थान बड़ा प्रिय है, इसलिए वृंदावन वासी भी उनको प्रिय बन जाते हैं। उस स्थान में जाने वाले लोग भी जो जाकर के भजन करते हैं वो भी भगवान को प्रिय बन जाते हैं। तो हमें भी अवार नवार जब भी अवसर मिले, आज भी वो वृंदावन धाम स्थित है मथुरा मंडल के भीतर, तो हमें जाकर के इन लीलाओं को स्मरण करना, वहां जाकर के साधन करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, करते रहना। हरे कृष्णा तो इस श्लोक का यही सार है इस कथा का, कि जिसमें व्रजवासी भगवान के बारे में चिंता कर रहे हैं, उनको सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान व्रजवासियों को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में आपस में एक दूसरे को सुखी करने की भावना, और उसी को ही प्रेम कहते हैं, है ना, प्रेम इसी को कहते हैं। जहां पर एक दूसरों को सुखी करने की भावना हो, परंतु वहां जो खुद सुखी होने की भावना हो उसे प्रेम नहीं कहते। तो हमें भी इन शिक्षाओं से लेना चाहिए कि हम भी भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे अलग अलग साधनों से, चाहे उनकी कथा सुन करके, उनका नाम लेकर के, उनकी सेवा करके और उनकी भक्ति का प्रचार करके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, जो भी है सभी तरह से हमें भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना, यही भक्तों का जीवन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही पर माने को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की निदाय गौर। बोलना चाहते हो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा बोलो।